आज है 8 मार्च दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। अजमेर दरगाह बम विस्फोट मामले में स्वामी असीमानंद सहित 7 अभियुक्त बरी किए गए, 3 को सजा मिली। विश्लेषक की राय।
असीमानंद निश्चित रूप से एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं और इनके बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर सही ढंग से जांच पड़ताल नहीं हुई।
उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर का मतदान संपन्न।
अभी ये पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस जीतेंगे, क्योंकि मणिपुर जो है ना कांग्रेस के अलावा नहीं बसा नहीं सकता।
दुनिया जहान में सुनिएगा कि अमेरिका में हिंदुस्तानियों पर बढ़ते हमलों की वजह क्या है।
एक तरह से तो पूरी निराशा आएगी है कि ये चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ अंदर से मजबूती भी आ रही है किस तरीके के साथ ऐसी चीजों को डील करना है।
पर पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिव्या आर्य से। अजमेर दरगाह में साल 2007 में हुए विस्फोट मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश दिनेश गुप्ता द्वारा दिए गए फैसले में आरोपियों देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को ही दोषी माना गया। जोशी की मौत हो चुकी है। स्वामी असीमानंद को अजमेर, हैदराबाद और समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामलों में साल 2010 को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। साल 2011 में उन्होंने मजिस्ट्रेट को दिए इकबालिया बयान में कहा था कि इन बम विस्फोटों में उनका और दूसरे हिंदू चरमपंथियों का हाथ था। बाद में वो अपने बयान से पलट गए और इसे एनआईए के दबाव में दिया गया बयान बताया। मणिपुर राज्य में मतदान खत्म होने के कुछ मिनटों बाद ही राजधानी के थांगल बाजार में एक धमाका हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाके में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पर धमाके की वजह अभी साफ नहीं हुई। मणिपुर में आज दूसरे चरण का मतदान हुआ। पहले चरण में वहां 4 मार्च को वोट डाले गए थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के सबसे बड़े सैनिक अस्पताल पर बंदूकधारियों ने हमला किया, जिसमें 30 लोग मारे गए हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमलावरों ने सैन्य अस्पताल के मुख्य द्वार पर एक आत्मघाती हमले के बाद कुछ हमलावरों ने इमारत के अंदर भी प्रवेश किया और वहां के स्टाफ, मरीजों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। ये कह रहे हैं कि वो बहुत मुश्किल से भाग पाए। उन्होंने सिर्फ एक हमलावर को देखा, जिसने एक सफेद कोट, एक डॉक्टर का लिबास पहना था और हाथ में कलाश्निकोव लेकर सब पर, गार्ड, मरीज, डॉक्टर, सभी पर वो गोलियां दाग रहा था। एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 400 बिस्तरों वाला यह अस्पताल अमरीकी दूतावास के पास ही है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि सभी धर्मों में अस्पताल को महफूज समझा जाता है और ये हमला पूरे अफगानिस्तान पर हमला है। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप को हेट क्राइम्स बढ़ाने का आरोप लगाया है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अपने वार्षिक संबोधन में जैद रद अल हुसैन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के झूठे दावे कि प्रवासी बाकी नागरिकों के मुकाबले ज्यादा अपराध करते हैं से उनके खिलाफ नफरत को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका की नई प्रवासी नीतियों से बड़े स्तर पर लोग हिरासत में लिए जा सकते हैं या वापस भेजे जा सकते हैं, जिससे उन्हें अपने देश में उत्पीड़ित किए जाने का खतरा हो सकता है। जर्मनी की आंतरिक खुफिया एजेंसी का कहना है कि उन्होंने जर्मनी में तुर्की की ओर से की जा रही जासूसी में तेजी देखी है। एजेंसी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि जर्मनी के अंदर दक्षिणपंथी तुर्की और यूरोपीय यूनियन द्वारा आतंकी गुट समझी जाने वाली कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के बीच तनाव बढ़ रहा है। पिछले दिनों में दोनों देशों के बीच रिश्तों में तेजी से खटास आ रही है। उत्तर कोरिया के नेता के सौतेले भाई, जिनकी हाल में हत्या हो गई थी, उनके बेटे ने इंटरनेट पर एक वीडियो डालकर कहा है कि वो सुरक्षित हैं।
My name is Kim Han-sol, from North Korea, part of the Kim family. Here's my passport.
Kim Han-sol कह रहे थे कि वो उनके पास उनका पासपोर्ट है, जो वो वीडियो में दिखा रहे हैं सामने लाकर, और उन्होंने कहा कि वो किम परिवार के उत्तराधिकारी हैं। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि किम हान-सोल किम परिवार के उत्तराधिकारी हैं और माना जा रहा है कि अगर उनके अंकल किम जोंग अन, जो इस वक्त उत्तर कोरिया के नेता हैं, अपने नेतृत्व के खिलाफ प्रतिस्पर्धा पर निशाना बनाना चाहें तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। आज आपके साथ हूं मैं, राजेश जोशी। अजमेर दरगाह बम विस्फोट कांड के मामले में असीमानंद उर्फ जितेंद्र चट्टोपाध्याय को बरी कर दिया गया है। जयपुर में एक विशेष अदालत ने असीमानंद के अलावा 6 और लोगों को बरी किया है, मगर भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता और संजय जोशी दोषी करार दिए गए हैं। संजय जोशी की हत्या की जा चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े असीमानंद 2007 में ही हुए समझौता एक्सप्रेस विस्फोट में भी अभियुक्त हैं। जयपुर से नारायण बारिट की रिपोर्ट।
अदालत ने बुधवार को जब फैसला सुनाया तो सभी आरोपी दम साधे खड़े रहे। अदालत ने इस विस्फोट के लिए देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को कसूरवार ठहराया है। इनमें से सुनील जोशी की मौत हो चुकी है, लेकिन इस्तगासा स्वामी असीमानंद समेत 7 लोगों के विरुद्ध आरोप साबित नहीं कर सका। इस मामले में जाँच एजेंसियां रामजी कलासरे और संदीप को भी अब तक नहीं खोज पाई है। एक और आरोपी गुजरात के रमेश गोहिल की भी पहले ही मौत हो चुकी है। फैसले के बाद वकीलों ने मीडिया को इसकी जानकारी दी।
देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को दोषी माना है, उनको सेक्शन 120B रेड विद 295 और एक्सप्लोसिव एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अपराधों के संबंध में दोषी माना गया है। सजा के बिंदु पर 16 तारीख को सुनवाई होगी। स्वामी असीमानंद, देवेंद्र, लोकेश शर्मा, मुकेश, चंद्रशेखर, मेहुल, इनको सबको बरी किया, 7 मूल्यवान को बरी किया गया है। दो मूल्यवान जो अभी ट्रायल फेस कर रहे थे उनको दोषी माना है। तीसरे मूल्यवान का जिसको दोषी माना उसकी पहले मृत्यु हो चुकी।
बचाव पक्ष के वकील उमरदान ने 7 आरोपियों के बरी होने पर बीबीसी से कहा, जांच एजेंसियों ने उन्हें झूठा फंसाया था। बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है वे भी फैसले के विरुद्ध अपील करेंगे। विस्फोट की घटना दरगाह में वर्ष 2007 में माह रमजान के दौरान हुई। इसने 3 जायरीन को मौत की नींद सुला दिया था। घटना के वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। तब राज्य के गृह मंत्री शांति धारीवाल ने घटना के लिए हिंदू संगठन को जिम्मेदार बताया और कहा, देवेंद्र गुप्ता जैसे आरोपी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का भी नाम लिया गया। संघ ने इन आरोपों को गलत बताया है। पिछले माह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA ने अदालत को बताया कि इंद्रेश कुमार और प्रज्ञा सिंह के खिलाफ घटना में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने इन 2 लोगों को गैर कानूनी गतिविधियां और विस्फोटक कानून के तहत दोषी घोषित किया है। इस कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अदालत अब 16 मार्च को सजा की मियाद कितनी हो इस पर अपना निर्णय सुनाएगी। इस मामले में 9 साल में स्थानीय पुलिस से लेकर CBI और फिर NIA तक ने जांच की। इस्तगासे ने कोई 149 गवाह प्रस्तुत किए। इस घटना को लेकर कांग्रेस, BJP और हिंदू संगठनों में आरोप प्रत्यारोप की लंबी जंग चली। यह लड़ाई अब फिर तेज हो सकती है। सैकड़ों साल पुरानी इस दरगाह में सभी धर्म आस्थाओं के लोग दुआ के लिए हाथ उठाते रहे हैं, लेकिन जब विस्फोट हुआ तो सबकी निगाहें उस हाथ को खोजती रही जो धमाकों में शामिल था। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
हमारे बहुत सारे श्रोताओं को याद होगा कि 2006-2007 में मालेगांव, हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ और समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुए थे और इन घटनाओं को तथा कथित भगवा आतंक या हिंदू आतंक कहे जाने पर RSS ने कड़ा एतराज किया था। इस पर और बात करने के लिए मैंने वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से संपर्क किया।
एक इम्प्रेशन जरूर बनता जा रहा है पिछले 2-3 दशकों से कि कुछ एक समुदायों या कुछ एक धाराओं के लोगों के प्रति कहीं न कहीं जांच एजेंसियों की नरमी दिख रही है या उनको सहूलियत देने वाली दिख रही है और कुछ एक लोगों के बारे में बेरहमी या यूं कहा जाए कि बहुत ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखती है। और ये कोई मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, भारत के विधि आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अपने यहाँ देश में बहुत सारी गिरफ्तारियां जो होती हैं या लोगों को आरोपी बनाया जाता है उसमें 60% मामले फालतू और फर्जी निकलते हैं और उनको जेल में रखने में सरकार का 43.2% पैसा ज्यादा खर्च होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जुडिशरी की जो प्रोसेस है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि देश में बहुत सारे लोग जेलों में 12 से लेकर 14 साल गिरफ्तार रखे गए, बेइंतहा उनके साथ क्रूरताएं की गई और अंत में पाया कोर्ट ने कि वो बिल्कुल बेगुनाह हैं।
इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे लोगों का नाम आया, खुद स्वामी असीमानंद वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े रहे, एक बार RSS के लीडर इंद्रेश का नाम भी इस मामले में आया था, उनसे फिर बातचीत या पूछताछ नहीं हुई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम जब बार बार लिया जाता है बरी होने के बाद, तो उसको कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता?
बिल्कुल, बरी होने के बाद बिल्कुल नहीं कटघरे में खड़ा किया जा सकता, यही स्थिति मैं आपको शुरू में बता रहा था। लेकिन जहां तक स्वामी असीमानंद का प्रश्न है, मैं स्वयं असीमानंद के बारे में एक रिपोर्टर के तौर पे जब मैं डोंग के सांप्रदायिक दंगे को कवर करने गुजरात गया था तब भी उनका नाम डांग के सांप्रदायिक दंगे के सिलसिले में आया था। और मैंने पाया है कि देखिए आसिमानंद निश्चित रूप से एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं और इनके बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर सही ढंग से जांच पड़ताल नहीं हुई और आज भी जिस मामले में उनको बरी किया गया है अगर इसको देखा जाए इस मामले को तो ये मामला बहुत पेचीदा है और इस मामले में वो स्वयं कई बार एक्सेप्ट कर चुके हैं अपने गुनाहों को, कई बार जो सुनवाई
हालांकि उन्होंने बाद में वापस भी ले लिया था अपना बयान,
समझौता एक्सप्रेस कि हमने दबाव के तहत किया। लेकिन
हाँ।
एक बात ये जरूर देखिए कि भारत में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं, जो दलित आदिवासियों के इश्यूज को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, उनके बारे में अपने देश का जो मीडिया है उसमें भी एटीट्यूड और इस तरह के जो हिंदू पंथी जो संगठन है या हिंदूवादी जो संगठन है उनके जो लोग हैं उनके बारे में मीडिया का अप्रोच साफ साफ अलग दिखता है।
वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की राय। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल हुई एक मुठभेड़ में मारे गए सैफुल्ला के पिता सरताज अहमद ने अपने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अगर वो देश के खिलाफ था तो हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
एटीएस के एक सीनियर अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी ने अब से कुछ घंटे पहले एक प्रेस वार्ता में बताया कि सैफुल्ला और उसके 8 साथी तथाकथित इस्लामिक स्टेट से प्रभावित थे। मंगलवार की सुबह मध्य प्रदेश में एक ट्रेन के अंदर हुए बम धमाके के बाद वहां 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिन्होंने सैफुल्ला और उसके साथियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी। सैफुल्ला लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और उसके 3 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। श्री चौधरी के अनुसार ये तमाम मुस्लिम युवा खुद से कट्टरपंथ बने थे, उन्हें किसी ने बहकाया नहीं था।
आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं, कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उसको, उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं।
कथित रूप से इस्लामिक स्टेट के प्रभाव में आने के बाद इन युवाओं ने कई बार चरमपंथी हमले करने की कोशिश की, जैसा कि श्री चौधरी ने बताया।
लगातार इन लोगों ने छोटी छोटी घटनाओं करने का प्रयास किया, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी में ये सफल नहीं हो पाए। अंतोगत्वा जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है उस घटना के बाद से इनकी असली गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई।
सैफुल्ला का संबंध कानपुर से है जहां उनके पिता सरताज अहमद ने उनका शव लेने से इनकार कर दिया। सैफुल्ला की मुठभेड़ में मौत और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या तथाकथित इस्लामिक स्टेट के कदम भारत में जम रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए दिल्ली की चरमपंथ मामलों की रिसर्च संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर अजय साहनी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता,
सवाल नहीं पैदा होता। आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि 1996 से अलकायदा यहाँ पे जड़ डालने की कोशिश कर रहा। 1996 में सबसे पहला हमारे जानकारी में ओसामा बिन लादन का बयान आया था कि भारत में मुसलमान बहुत तंग है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, अब्यूज हो रहा है और भारत के मुसलमान को जिहाद शुरू करना चाहिए,
शामिल हो जाना चाहिए। जी
जी, तो उस जमाने से आज तक ये बता दीजिए मुझे कितना मुसलमान अलकायदा के साथ जुड़ गया।
लेकिन श्री साहनी ये जरूर स्वीकार करते हैं कि तथाकथित इस्लामिक स्टेट के कुछ मॉड्यूल भारत में मौजूद हैं। उनके अनुसार ऐसे लोग मुट्ठी भर हैं। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
BBC हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर, मैं हूं राजेश जोशी और अब चुनाव चर्चा। मणिपुर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज 22 सीटों पर मतदान हुआ। आज के दौर में सभी की निगाहें थौबाल सीट पर हैं जहां से मुख्यमंत्री ओकरम इबोबी सिंह के खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चुनाव लड़ रही हैं। BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने थौबाल पहुंचकर मतदाताओं का मन टटोला।
लीलोंग हायर सेकेंडरी मदरसे का बड़ा सा टिन का गेट खुला था, सिर्फ आधा। जब मैं अपना पहचान पत्र दिखा रहा था तो नोटिस किया कि एक छोटी सी लड़की लगभग वहां आने वाले सभी वोटरों को पान पेश कर रही थी, बड़े सलीके से पॉलीथीन की एक पारदर्शी पैकेट में रखा हुआ। पास के कुछ लोगों के पास बैठी दिखी तो मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पान लग रहा था और बांट रहा था।
ये पान जो है किस लिए है?
पान जो अलग दुकान है,
अलग दुकान है इसका।
इधर बैठने वाला जो आदमी वो दुकान इधर बैठा है।
मतलब कोई ट्रेडिशन है यहाँ का कि जो वोटर आता है उसको?
नहीं, ट्रेडिशन तो नहीं है, सिर्फ ये दुकान चलाता है थोड़ा थोड़ा।
लिलोंग की 33% आबादी मुस्लिम है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक फजलुर रहीम वहाँ से फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। पास के थौबाल से राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे ओकराम इबोबी सिंह खड़े हैं। 16 सालों के वास को समाप्त करने के बाद इरोम शर्मिला भी अपनी पार्टी पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस के यहाँ से उम्मीदवार हैं। 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस के खिलाफ वोटरों में सत्ता विरोधी भावना जरूर महसूस होती है, लेकिन इबोबी सिंह की सीट पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। रिटायर्ड इंजीनियर इबोई यामा सिंह कहते हैं,
कंप्लेन है, वो विरोधी ने कंप्लेन किया था।
जनता को क्या लगता है?
जनता तो ऐसा लगता है वो थोड़ा ज्ञान लगा गुड सिटीजन है ना, उसको बहुत समर्थन किया।
यहाँ जब आप चुनाव अभी गए वोट देने के लिए तो आपका मेन इशू क्या था, आप क्या सोच रहे थे यहाँ जो है वो थौबाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेन जो है इशू क्या रहा?
थौबाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई इशू नहीं है, कोई नहीं इशू नहीं थौबाल में।
वांती चुनाव क्षेत्र में भी मूड कुछ अलग नजर नहीं आया।
अभी ये पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस जीतेंगे, क्योंकि मणिपुर जो है ना कांग्रेस के अलावा नहीं बसा नहीं सकता।
नजीर खान से जब बात करके निकले तो रास्ते में उम्मीदवारों के कटआउट्स के पास पीतल के कलश में पानी और उस पर तैरते फूल और पास ही केले के पत्तों पर फल रखे नजर आए। शिक्षक महेश्वर वैखा कहते हैं कि मणिपुर में चुनाव प्रचार के शुरुआत में हर उम्मीदवार के अपनी पार्टी का झंडा फहराने का भी चलन है।
ऐसा होता है कि जो वोटर्स लोग हैं अपना अपना वो सपोर्ट जो सपोर्ट करता है कैंडिडेट को वो अपने अपने घर से जो भी देना चाहते हैं फल वगैरह लेकर आते हैं और सब सबके सामने रख लेते हैं और इसके बाद सब मिलकर के खा जुल करके बातचीत करके वापस जाता है।
कुछ लोग शायद ये कहें कि बात अब सिर्फ वोटर और नेता की नहीं रही, उसमें देवता और दुआ भी शामिल हो गया है। फैसल मोहम्मद अली, BBC वांगजिन, मणिपुर।
और अगर आपने देर से रेडियो खोला हो तो आपको बता दें कि मतदान के बाद इम्फाल में एक बम विस्फोट हुआ है जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 2 की हालत नाजुक है। उधर उत्तर प्रदेश में भी मतदान के अंतिम चरण में 7 जिलों में फैली 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें वाराणसी भी शामिल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के हैवीवेट मंत्री 3 दिन तक खेमा गाड़े रहे। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने वाराणसी में कुछ महिला वोटरों से बात की।
हम इस वक्त हैं काशी विद्यापीठ के वोटिंग बूथ में और हमारे साथ नीलू मिश्रा हैं, एथलीट, इंटरनेशनल एथलीट हैं। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए कि लोग ज्यादा वोट दें। पूरा माहौल पिंक है क्योंकि आज इंटरनेशनल विमेंस डे है।
जी हाँ, एज ए ब्रांड एम्बेसडर मैं पिछले 6 महीने से काम कर रही हूँ और हम लोगों का था कि जितने भी बूथ हैं जहाँ पिछले साल मिनिमम वोटिंग हुई उनको अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने रैली की, नुक्कड़ नाटक किया, गली क्रिकेट खेला, महिलाओं की रस्सा कसी हुई और ग्रीन ग्रुप के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से डोर टू डोर जाके हम लोगों ने कैंपेनिंग की।
एक मुझे सेल्फी स्टेज दिख रहा है जिसमें आई एम प्राउड टू बी अ वोटर लिखा है। Yes. लोग यहां पर आकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र है।
आदर्श मतदान ऐसे 49 बूथ बनारस में है। मेरा पिंक बूथ था।
आपका नाम क्या है?
संगीता श्रीवास्तव।
संगीता जी, आपके लिए क्या इशू है जिन आधार पर आप वोट देने आई हैं? इश्यूज क्या हैं?
यही है कि मतलब वोट देने से अच्छा कोई व्यक्ति आए जो हमारे बनारस को आगे पहुँचाए। जैसे हम लोग अभी घूम के आए हैं जयपुर, उदयपुर, इधर उधर की सड़कें, जयपुर पंजाब की सड़कें इतनी अच्छी हैं, 4 लेन 6 लेन। हम लोग के यहाँ तो हमारे बनारस की रोड कहीं से भी 6 लेन 4 लेन नहीं जुड़ती है। कहीं भी जाना हुआ हमें तो इतनी प्रॉब्लम होती है। तो वो थोड़ा हमको लगता है कि कोई ऐसी सरकार आए जो महिलाओं के बारे में सोचे, जो थोड़े गरीब हैं उनके लिए, थोड़े जो मीडियम हैं उनके लिए, है ना, कि कुछ वो कर सकें, कुछ उनके लिए हेल्प करें ताकि वो अपनी कोई चीज़ आगे बढ़ा सकें, जो उनके अंदर हुनर है उसको आगे बढ़ा सकें, है ना। और सुरक्षा भी अभी भी बहुत सुरक्षा नहीं है। अभी भी हम लोग निकलते हैं तो सोच के निकलते हैं कि दुपट्टा ले लो, मुँह ढक लो, लोग घूरते हैं ऐसे जगह।
यहाँ पर कहा जाता है कि टूरिस्ट, दुनिया भर से टूरिस्ट जो आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को खतरा नहीं उन्हें लगता है?
नहीं, वो खतरा मतलब ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी छेड़छाड़ और ये सब छोटी मोटी घटनाएं तो हर जगह होती हैं, मतलब यहाँ बनारस में तो बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक फ्रेंड है, वो लोग पेपर में निकला था, मेरी 2 फ्रेंड मिलके एक बाइक वाले को मारी थी चप्पल से, बहुत ज़्यादा मारी थी उनको, वो छेड़े थे उनको तो, रोली सिंह और एक और फ्रेंड मेरी, दोनों बहुत मारी थी।
बहुत बहुत शुक्रिया।
वाराणसी में महिला वोटरों से बात कर रहे थे विनीत खरे और आज बुधवार है, समय है दुनिया जहान का। सुनिए मोहनलाल शर्मा से कि पिछले दिनों अमेरिका में भारतीयों पर बढ़ते हमलों का क्या कारण है।
दुनिया जहां
On that day, the weather was just so perfect that neither of us could, you know, do what we do regularly, you know, work till 7 o'clock and then go home. Just said, hey, you know.
वो शाम बाकी दिनों से अलग बेहद सुहावनी थी। एक रेस्तरां में श्रीनिवास और मैं बियर पी ही रहे थे कि एक आदमी अचानक हमारे पास आया और उंगली दिखाते हुए बोला कि किस देश से हो तुम? क्या तुम यहाँ अवैध रूप से रह रहे हो? हम वहाँ से बाहर निकल ही रहे थे कि वो वापस आया। उसके हाथ में गन थी। अगली आवाज उस गन से निकली गोली की थी। अगले ही पल मैं जमीन पर था। मैं चिल्लाकर मदद की गुहार लगा रहा था कि मुझे और मेरे दोस्त को गोली लगी है।
I was yelling for everybody, like, where, you know, help, help, I got shot.
फरवरी में जब अमरीकी राज्य कैंसस के ओलेथ में अमरीकी कंपनी गार्मिन में काम करने वाले भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास को चीवोतला पर हमला हुआ तो उनके दोस्त आलोक मदसानी उनके साथ थे। एक गोली उन्हें भी लगी, वो बच गए, लेकिन श्रीनिवास उनकी तरह से भाग्यशाली नहीं थे। हमले के बाद पुलिस अधिकारी उनकी पत्नी सुनैना के पास पहुंचे।
Two cops came, they knocked on the door, they asked my name. श्रीनो
दो पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने मेरा नाम पूछा, श्रीना का नाम, उनकी जन्मतिथि पूछी। फिर उन्होंने मेरे सामने वो शब्द कहे। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है, लेकिन
श्रीनिवास कुची वोतला की मौत के 1.5 हफ्ते बाद ही अमेरिका के सिएटल में एक और भारतीय सिख पर हमला हुआ। उन्हें हाथ में गोली लगी। खबरों के मुताबिक हमलावर उन्हें अपने देश वापस लौटने के लिए कह रहा था। मैंने अमेरिका में डेलवेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान से बात की और पूछा कि प्रवासी भारतीयों पर लगातार हमले क्यों हो रहे हैं।
जो सिख पर हमले होते हैं वो बेसिकली 1979 से जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ है उसके खिलाफ, जब से इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट अमेरिका में आई है, वो आयतुल्ला खुमेनी को देखकर, उनकी तस्वीरों को देखकर टर्बन और बड़ी दाढ़ी को वो इस्लाम से कनेक्ट करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद अगर आप बिन लादेन के फोटोग्राफ और उसकी टर्बन और बियर्ड देखते हैं तो उनको बस वही खुमेनी और बिन लादेन का कनेक्शन करके वो इन पे हमला कर देते हैं। ये जो दूसरा कैंसस में जो इंडियन अटैक हुआ वो क्लियरली रेशियल हेट्रेड है। वो एक एक बिल्कुल एंटी फॉरेनर एंटी इमिग्रेंट अटैक था।
भारतीय समुदाय में पिछले दिनों अप्रवासियों और मुसलमानों के खिलाफ ट्रंप के बयानों को लेकर चिंता रही है। मामला सिर्फ एक या दो अमरीकी राज्यों का नहीं बल्कि बात पूरे अमरीका की है। इस तरह के हमलों के बाद वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय को झटका लगा है। न्यूयॉर्क में एक गारमेंट स्टोर चलाने वाली भारतीय मूल की महिला कहती है,
सब लोगों में दहशत फैली हुई है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, तो किसी को भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अमेरिका में रहते हैं, सब अमेरिकन्स हैं। अमेरिकन्स होते हुए भी हमारे दिलों में इतनी दहशत वो पैदा हो गई है कि क्या होगा। यही सब लोग सोच रहे हैं कि कल को क्या होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल लिया है इधर हमारे इस एरिया में।
सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस तरह यानी कि नफरत भरे हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं? हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद में अपने पहले भाषण की शुरुआत में ही नस्ली भेदभाव और उससे प्रेरित हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की थी। अमेरिका में भारत ही नहीं, दुनिया भर के देशों के लोग अच्छी नौकरी और बेहतर जीवन शैली की तलाश में आते हैं, बाद में बस भी जाते हैं। आजकल अमेरिका में इस बात की चिंता काफी है कि विदेशी मूल के लोग अच्छी नौकरियां ले लेते हैं और इससे वहां के स्थानीय लोगों को नौकरी पाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। ट्रंप भी अमेरिका की नौकरियां देश के बाहर न जाने की बात कहते हैं, तो क्या इससे अमेरिका में हेट क्राइम बढ़ रहा है? प्रोफेसर मुक्तदर खान,
ग्लोबलाइजेशन की वजह से और जो खासतौर से जो साउथ अमेरिका से जो इलीगल इमिग्रेशन वगैरह हो रहा है उसके वजह से अमेरिका में जो मेन स्ट्रीम व्हाइट कम्युनिटी थी उनके लिए بغیر تعلیم کے، بغیر ایجوکیشن کے، بغیر سکلز کے اب اچھے جاب نہیں ملتے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عجیب سی بات کہی کہ جابز واپس آ رہے ہیں، جابز واپس آ، جابز کوئی واپس نہیں آ رہے ہیں امریکہ.
آپ کو یاد ہی ہوگا کہ 2008-09 میں اسی طرح کے ہیٹ کرائم کے معاملے آسٹریلیا میں بھی سامنے آئے تھے. اس سمے وہاں رہ رہے پرواسی بھارتیوں پر حملے ہوئے تھے. تو کیا آسٹریلیا اور امریکہ کے ان حملوں میں کوئی سمانتا دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر پردیپ تنیجا میلبرن یونیورسٹی میں فیلو ہیں.
وہ ماحول تھوڑا دوسرا تھا اس سمے. دیکھیے آسٹریلیا میں لیبر پارٹی کی سرکار تھی. لیبر پارٹی کی سرکار کافی پروگریسو ہے، ان کے نسلواد وغیرہ کے خلاف کافی اسٹرانگ مطلب ان کے وچار ہیں. تو ایسی کوئی سرکاری نیتیاں نہیں تھیں جو ان کو پروتساہن دے رہی تھیں ایسی گھٹناؤں کو. اور جو گھٹنائیں ہوئی تھیں ان میں زیادہ تر بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو تھوڑے اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں وہ لوگ اس میں انوالو تھے. کچھ یہ ہے کہ جو انڈین نیو مائیگرنٹس تھے یا اسٹوڈنٹس تھے وہ ایسے علاقوں میں رہ رہے تھے جو کہ مطلب لو رینٹ والے تھے لیکن خطرناک علاقے بھی تھے.
ڈاکٹر پردیپ تنیجا مانتے ہیں کہ ٹرمپ کے بیانوں کے چلتے پرواسیوں کے خلاف ایسے سندیش گئے ہیں. بھارتی سمودائے چنتت بھی ہے اور ڈرا ہوا بھی، لیکن وہ ان استھتیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. امریکہ میں سکھ سمودائے کے لیے کام کرنے والے سنگٹھن سکھ کوئلیشن کے نیتا جسمیت سنگھ،
دہشت تو آتی ہے اس کے ساتھ، کمیونٹی میں یہ بھی ہے کہ ہیٹ ہے، ایسے جن سا غلط پرچار ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ کس طریقے سے کوالیشن بلڈنگ کر سکتے ہیں. سو دونوں طریقے سے، ایک طرح سے تو تھوڑی نراش آئے گی ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف اندر سے مضبوطی بھی آ رہی ہے کس طریقے کے ساتھ ایسی چیزوں کو ڈیل کرنا ہے.
اور شاید یہی وجہ ہے کہ کینسس میں اپنے پتی شری نواس کو کھونے کے بعد سنینا کی چاہت ہے کہ وہ نفرت کا جواب پیار سے دیں گی.
We should go back and never come back to this country. But now,
اس گھٹنا کے بعد میں نے کہا ہم کبھی اس دیش میں واپس نہیں آئیں گے. پر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں کے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے واپس آنا ہوگا کہ تم نے میرے پیار کو چھینا، لیکن میں پیار بانٹنے کے لیے یہاں آؤں گی.
But I'm here to spread love.
موہن لال کی اس دنیا جہان کے انک پر آپ کی پرتکریا کا ہمیں انتظار رہے گا. اور ہم ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی ہندی ڈاٹ کام کے پہلے پنے پر. میرے سامنے کمپیوٹر کھلا ہے، اس میں سب سے اوپر خبر ہے اگر وہ دیش کے خلاف تھا تو شب نہیں چاہیے، یعنی جو کل اتر پردیش میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ خبر ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا. دوسری خبر ہے سوامی اسیمانند کون ہیں، وہ بھی آپ کے بی بی سی ہندی ڈاٹ کام پر ہوگی. کوہلی پر آسٹریلیائی اخبار بفرے، ایک یہ خبر ہے. اور ایک دلچسپ خبر شاید آپ کو دلچسپ لگے، خود کٹپا نے بتایا کہ باہوبلی کو کیوں مارا. اس دوند سے آپ میں سے بہت سارے لوگ پریچت ہوں گے. اگر اور جاننا ہے تو آئیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ہندی ڈاٹ کام پر. اب سبھا سماپت کرنے کا سمے ہو رہا ہے، لیکن سبھا سماپت کرنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں مکھیہ سماچار ایک بار پھر.
بی بی سی سماچار. اجمیر درگاہ میں سال 2007 میں ہوئے وسفوٹ معاملے میں سی بی آئی کی وشیش عدالت نے مکھیا آروپی سوامی اسیمانند سہت 7 آروپیوں کو بری کر دیا ہے. سال 2011 میں سوامی اسیمانند نے مجسٹریٹ کے سامنے کہا تھا کہ ان بم وسفوٹوں میں ان کا ہاتھ ہے، لیکن بعد میں وہ اپنے بیان سے پلٹ گئے تھے. منی پور راجیہ میں متدان ختم ہونے کے کچھ منٹوں بعد راجدھانی کے ایک بازار میں دھماکہ ہوا ہے جس میں 9 لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے. ان میں سے 2 کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے. افغانستان کی راجدھانی کابل میں سب سے بڑے سینک اسپتال پر بندوق دھاریوں نے حملہ کیا ہے جس میں 30 لوگ مارے گئے ہیں. افغان رکشا منترالے کے مطابق حملہوروں نے سینیہ اسپتال کے مکھیہ دوار پر ایک آتم گھاتی حملے کے بعد کچھ حملہوروں نے عمارت کے اندر پرویش کیا اور وہاں کے سٹاف اور مریضوں پر گولیاں چلانی شروع کر دیں. مانواधिकार کے لیے سنیکت راشٹر کے اچ آیوکت نے امریکہ کے راشٹرپتی ٹرمپ کو ہیٹ کرائمز بڑھانے کا آروپ لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نئی پرواسی نیتیوں سے بڑے استر پر لوگ واپس اپنے دیش لوٹنے کو مجبور ہو سکتے ہیں. بی بی سی سماچار.
تو یہ تھے اب تک کے مکھیہ سماچار. دیش اور دنیا سے ہماری ویب سائٹ آپ کو 24 گھنٹے جوڑی رہتی ہے. اب میں راجیش جوشی آپ سے انومتی چاہتا ہوں. اس کاریکرم کا تکنیکی پکش سنبھالا راجیش چوہان نے. اگلی ملاقات ہوگی بھارتی سمے کے مطابق کل صبح 6:30 بجے. نمسکار.